आप हैं SBS हिंदी के साथ।
पेश है आज के मुख्य समाचार वृषाली जैन के साथ। न्यू साउथ वेल्स में नए सार्वजनिक टीकाकरण केंद्र के लिए जगह की खोज जारी। भारत में जल्द शुरू हो सकते हैं बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन के ट्रायल। और न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला में इंग्लैंड के दल से सभी IPL खिलाड़ी बाहर। और अब खबरें विस्तार से। न्यू साउथ वेल्स हेल्थ राज्य के दूसरे कोविड 19 सामूहिक टीकाकरण केंद्र को लॉन्च करने के लिए न्यूकासल में एक स्थान की तलाश में है। स्वास्थ्य मंत्री ब्रेड हैजर्ड ने पुष्टि की है कि इस केंद्र के लिए एक उपयुक्त साइट या इमारत की तलाश शुरू हो चुकी है। सिडनी ओलंपिक पार्क क्लिनिक की जगह तब मिली थी जब न्यू साउथ वेल्स के स्वास्थ्य कर्मचारी ने एक रियल एस्टेट वेबसाइट पर उस जगह की लीज के लिए विज्ञापित देखा था। श्री हैजर्ड की उम्मीद है कि जनता के पास भी इस बारे में कुछ सुझाव हो सकते हैं कि केंद्र कहां खोला जाए। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने न्यू साउथ वेल्स हंटर वैली में एक नए गैस से चलने वाले बिजली संयंत्र में $600 मिलियन का निवेश करने के सरकार के फैसले का बचाव किया है। 2023 में लिटिल पावर स्टेशन के बंद होने के बाद बिजली की कमी को पूरा करने के लिए कुरीकुरी में सरकारी कंपनी स्नो हाइड्रो लिमिटेड 660 मेगावाट की ओपन साइकिल गैस टरबाइन का निर्माण करेगी। ऊर्जा विश्लेषकों का कहना है कि इसकी जरूरत नहीं है और यह वादे के मुताबिक बिजली की कीमतों में कमी भी नहीं लाएगा। लेकिन श्री मॉरिसन जोर देकर कहते हैं कि यह आवश्यक है।
It supports the renewable energy in the system. Wind doesn't always blow, sun doesn't always shine, and you need firming power from gas to ensure that those renewable energy investments are effective. Battery development is still at a very early stage, and gas is an important transition fuel to support the transition of Australia's energy economy over the next 20, 30 years.
प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि कोविड-19 महामारी के ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था पर पड़े असर से उबरने के लिए फेडरल सरकार की योजना यह है कि ऑस्ट्रेलियाई व्यवसायों के लिए टैक्स की दर को कम रखा जाए। श्री मॉरिसन का कहना है कि वह चिंतित हैं कि लेबर सरकार के तहत विक्टोरिया में कर बढ़ रहे हैं।
That's not how you grow your economy. That's not how you get people in work. That's not how you help them buy their first home. You achieve those things by keeping taxes low. There's a big job to do here in Australia, a huge job to do, and businesses are rolling up their sleeves, workers are rolling up their sleeves, and they're being supported by the lower tax environment that we've created.
दर्जनों कानूनी स्वास्थ्य और सामुदायिक संगठन फिर से ऑस्ट्रेलियाई सरकार के सभी स्तरों पर आपराधिक जिम्मेदारी की उम्र 10 से बढ़ाकर 14 करने का आह्वान कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन मेडिकल एसोसिएशन और ऑस्ट्रेलियन लॉयर्स अलायंस उन 76 समूहों में से हैं जो कहते हैं कि हर साल जेल में बंद होने वाले लगभग 614 साल से कम के उम्र के बच्चों के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के लिए कानून में तत्काल इस सुधार की आवश्यकता है। पूरे ऑस्ट्रेलिया में 10 साल से कम उम्र के बच्चों को गिरफ्तार किया जा सकता है, उनकी तलाशी ली जा सकती है 14 साल से कम के बच्चों को गिरफ्तार किया जा सकता है, उनकी तलाशी ली जा सकती है और जेल में बंद कर दिया जा सकता है। हिरासत में लिए जाने वाले 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में लगभग 65% बंदी इंडिजिनस युवा हैं। समूहों का कहना है यह व्यवस्था चिकित्सा साक्ष्य, मानवाधिकार कानून और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं है। नेशनल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस स्कीम की मंत्री लिंडा रेनॉल्ड्स का कहना है कि भविष्य में इसकी व्यवहारिकता सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम की लागत को कम रखने की आवश्यकता है। सेनेटर रेनॉल्ड्स ने इस योजना की संसदीय जांच में कहा है कि इसकी लागत संभाल के बाहर बढ़ती नजर आ रही है। पिछले सप्ताह पेश हुए फेडरल बजट से पता चला था कि NDIS में पार्टिसिपेंट्स प्लान की लागत 2024-25 तक बढ़कर 31.9 बिलियन डॉलर तक हो सकती है। वे कहती हैं कि वे इसकी लागत को संभालते हुए उन लोगों के लिए NDIS में सुधार करना चाहती हैं जो इस पर भरोसा करते हैं।
We have ensured that it is fully funded, but a 12% per annum growth trajectory is not sustainable. And demand driven, as you well know, as we all well know, either for the taxpayer does not mean unlimited.
और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इजरायली बमबारी से लगभग 58,000 फिलिस्तीनी विस्थापित हुए हैं। दोनों ही देशों में से कोई भी युद्ध विराम के लिए हामी नहीं भर रहा है। एक तरफ इजरायल अपनी हवाई बमबारी जारी रखे है तो दूसरी तरफ फिलिस्तीनी रॉकेट फायर नहीं रुक रहे। गाजा के चिकित्सा अधिकारियों का कहना है कि 10 मई से जब से हिंसा बढ़ी 217 फिलिस्तीनी जिनमें 63 बच्चे शामिल हैं अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं इसराइल ने अपने 12 बाशिंदों को खोया है जिनमें 2 बच्चे शामिल हैं। सेव द चिल्ड्रन की गाजा कम्युनिकेशन ऑफिसर मेजिन नाइम कहती हैं कि फिलिस्तीनी बच्चे रातों को सो नहीं पा रहे हैं और बमों की आवाज़ से हर वक्त चौकन्ने रहते हैं।
It's going to be very tough to get them to forget what they have experienced if this ends, because this is a cycle of escalation that happened before. There were times in the past where children have gone through this, and it continues to affect them for years and affect their behavior. So it's going to be a big challenge to help children cope with this.
न्यूयॉर्क के स्टेट अटॉर्नी जनरल ने पूर्व अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन को बताया है कि उनके खिलाफ चल रही कार्यवाही अब केवल सिविल प्रक्रिया ना रहते हुए क्रिमिनल जांच भी हो गई है। मैनहट्टन के जिला अटॉर्नी साइरस वैंस के कार्यालय ने कहा कि वे कंपनी के खिलाफ मिले संभवतः व्यापक और दीर्घ आपराधिक आचरण के सबूतों की जाँच कर रहे हैं जिनमें टैक्स फ्रॉड और जाली बिजनेस रिकॉर्ड बनाना शामिल है। इस जांच की शुरुआत तब हुई जब श्री ट्रंप के पूर्व वकील माइकल कोहेन ने उन 2 औरतों को घूस खिलाने की कोशिश की जिन्होंने श्री ट्रंप पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। श्री ट्रंप ने इन आरोपों का खंडन किया था। और अब खबरें भारत से। मुंबई में ताऊते तूफान के कारण समुद्र में फंसे लोगों को बाहर निकालने का अभियान बुधवार को भी जारी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक नौसेना P-305 बार्ज से 180 लोगों को बचा चुकी है जबकि 93 लोग अब भी वहां फंसे हुए हैं। हालांकि ये बार्ज डूब चुका है। बचाए गए एक कर्मचारी ने NDTV को बताया कि बार्ज के डूबने से पहले इस पर सवार लोगों ने लाइफ जैकेट पहनकर समंदर में छलांग लगा दी थी। बताते चलें कि नौसेना के 4 युद्धपोत इस मिशन पर लगे हुए हैं। वहीं दूसरा बार्ज गाल कंस्ट्रक्टर से सभी 137 लोगों को कोस्ट गार्ड और नौसेना ने बचा लिया है। ऐसे ही एक और जहाज सागर भूषण को भी बचा लिया गया है जिस पर 101 लोग सवार थे। नीति आयोग सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत दवा नियामक ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 2 साल से लेकर 18 साल के बीच की उम्र के बच्चों के लिए COVID-19 वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के फेज 2 और 3 को मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि
जो कोवैक्सीन है हमारा वैक्सीन उसको परमिशन दी गई है कि वो बच्चों में अब ट्रायल आगे लेके जाए। उस वैक्सीन के अभी ट्रायल जो है वो 18 से ऊपर का हुआ है इसलिए वो रिकमेंडेशन 18 के ऊपर की है, लेकिन बच्चों में ये इस्तेमाल हो और उसमें क्या रिस्पांस है उसका भी उनको ट्रायल की परमिशन मिली है और वो काम मुझे बताया गया है कि अगले 10-12 दिन में ये काम भी शुरू हो रहा। तो
भारत की कम से कम अक्टूबर तक कोवैक्स और अन्य देशों को टीकों के निर्यात को फिर से शुरू करने की संभावना नहीं है। भारत में टीकों को फिलहाल घरेलू प्रयोग के लिए रोका जा रहा है। भारत ने 1 महीने पहले 66 मिलियन से ज़्यादा डोज सहायता के रूप में या बेचने के बाद वैक्सीन का निर्यात रोक दिया था। भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों में जहां थोड़ी गिरावट देखने को मिली है वहीं मौत के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में पूरे देश में 4,000 529 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई है। एक दिन का ये आंकड़ा पूरे विश्व में अब तक का सबसे अधिक बताया जा रहा है। वहीं इस दौरान 267,334 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 2,54,96,330 तक पहुंच गई है। इस दौरान 13,12,155 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया है। अब तक 18,58,902 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। पिछले एक दिन में 20,08,296 लोगों की जांच भी हुई है। भारत का पॉजिटिविटी रेट भी कम होता दिख रहा है, जो कि अब गिरकर 13.31% तक पहुंच गया है। और अब डॉलर का हाल। आज यानी बुधवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 56.87 रुपये और अमरीकी डॉलर की तुलना में एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत 78 सेंट्स थी। और अब खबरें खेल के मैदान से। न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए इंग्लैंड की टीम का ऐलान कर दिया गया है। मंगलवार को चुनी गई इस टीम में जोस बटलर और जॉनी बेयरस्टो सहित इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने वाले स्टार खिलाड़ियों को आराम दिया गया, जबकि चोट के कारण जोफ्रा आर्चर और बेन स्टोक्स के नाम पर विचार नहीं किया गया। इंग्लैंड ने 2 जून से शुरू होने वाली श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय टीम का चयन किया है। और अंत में एक नजर कल यानी गुरुवार के मौसम के हाल पर। पर्थ में कल तेज धूप रहने की संभावना है। यहां अधिकतम तापमान 25 जबकि न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में कल बादल छाए रहने के आसार हैं। यहां अधिकतम तापमान 19 डिग्री जबकि न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मेलबर्न में कल बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। यहां अधिकतम तापमान 21 डिग्री जबकि न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। देश की राजधानी कैनबरा में आंशिक रूप से बादल घिरे रहेंगे। यहां का अधिकतम तापमान 16 डिग्री जबकि न्यूनतम -1 डिग्री रहने का अनुमान है। सिडनी में धूप छांव का मौसम रहेगा। यहां अधिकतम तापमान 21 डिग्री जबकि न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। ब्रिस्बेन में दिन भर धूप खिली रह सकती है। यहां अधिकतम तापमान 23 डिग्री जबकि न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। डार्विन में पूरे दिन उमस के साथ धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 33 जबकि न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल बारिश की भारी आशंका है। दिल्ली का अधिकतम तापमान 30 डिग्री जबकि न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। समाचार में आज इतना ही। नमस्कार।
ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify या फिर जहां आप podcast सुनते हैं वहां हम हैं।